गलातियों गलातियों अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो एक प्रेरित है, जिसने एक ऐसा सेवा व्रत धारण किया है जो उसे न तो मनुष्यों से प्राप्त हुआ है और न किसी एक मनुष्य द्वारा दिया गया है, बल्कि यीशु मसीह द्वारा उस परम पिता परमेश्वर से, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से फिर से जिला दिया था, दिया गया है। और मेरे साथ जो भाई हैं उन सब की ओर से गलातिया क्षेत्र की कलिसियाओं के नाम हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ताकि इस पाप उन संसार से जिसमें हम रह रहे हैं वह हमें छुटकारा दिला सके। हमारे परम पिता परमेश्वर की यही इच्छा है, वह सदा सर्वदा महिमावान हो, आमीन। मुझे अचरज है कि तुम लोग इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़कर, जिसने मसीह के अनुग्रह द्वारा तुम्हें बुलाया था, किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। कोई दूसरा सुसमाचार तो वास्तव में है ही नहीं, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं और मसीह के सुसमाचार में हेर फेर का जतन कर रहे हैं। किंतु चाहे हम हो और चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हें हमारे द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि चाहे हम हो और चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हारे द्वारा स्वीकार किए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है। क्या इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मनुष्यों का समर्थन चाहता हूँ, या यह कि मुझे परमेश्वर का समर्थन मिले, अथवा क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का जतन कर रहा हूँ? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का सेवक कैसा नहीं होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि वह सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है, कोई मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं है, क्योंकि न तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और न ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि दैवी संदेश के रूप में यस यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ है। यहूदी धर्म में मैं पहले कैसा जिया करता था उसे तुम सुन चुके हो, और तुम यह भी जानते हो कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर कितना अत्याचार किया है और उसे मिटा डालने का प्रयास तक किया है। यहूदी धर्म के पालने में मैं अपने युग के समकालीन यहूदियों से आगे था, क्योंकि मेरे पूर्वजों से जो परंपराएं मुझे मिली थीं, उनमें मेरी उत्साहपूर्ण आस्था थी। किंतु परमेश्वर ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था और अपने अनुग्रह में मुझे बुला लिया था, ताकि वह मुझे अपने पुत्र का ज्ञान करा दे, जिससे मैं गैर यहूदियों के बीच उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। उस समय तत्काल मैंने किसी मनुष्य से कोई राय नहीं ली, और न ही मैं उन लोगों के पास यरूशलेम गया जो मुझसे पहले प्रेरित बने थे, बल्कि मैं अरब को गया और फिर वहां से दमिश्क लौट आया। फिर 3 साल के बाद पतरस से मिलने के लिए मैं यरूशलेम पहुंचा और उसके साथ एक पखवाड़े ठहरा, किंतु वहां मैं प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर किसी भी दूसरे प्रेरित से नहीं मिला। मैं परमेश्वर के सामने शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसमें झूठ नहीं है। उसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रदेशों में गया, किंतु यहूदिया के मसीह को मानने वाले कलीसिया व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं जानते थे, किंतु वे लोगों को कहते सुनते थे, वही व्यक्ति जो पहले हमें सताया करता था उसी विश्वास यानी उसी मत का प्रचार कर रहा है जिसे उसने कभी नष्ट करने का प्रयास किया था। मेरे कारण उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। गलातियों अध्याय 2। 14 साल बाद मैं फिर से यरूशलेम गया। बरनबास मेरे साथ था और तीतिस को भी मैंने साथ ले लिया था। मैं परमेश्वर के दिव्य दर्शन के कारण वहां गया था। मैं गैर यहूदियों के बीच जिस सुसमाचार का उपदेश दिया करता हूँ, उसी सुसमाचार को मैंने एक निजी सभा के बीच कलीसिया के मुखियाओं को सुनाया। मैं वहां इसलिए गया था
कि परमेश्वर ने मुझे दर्शाया था कि मुझे वहां जाना चाहिए, ताकि जो काम मैंने पिछले दिनों किया था या जिसे मैं कर रहा हूं वह बेकार न चला जाए। परिणाम स्वरूप तीतुस तक को, जो मेरे साथ था, यद्यपि वह यूनानी है, फिर भी उसे खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, किंतु उन झूठे बंधुओं के कारण जो लुके छिपे हमारे बीच भेदिये के रूप में यीशु मसीह में हमारी स्वतंत्रता का पता लगाने को इसलिए घुस आए थे कि हमें दास बना सकें, यह बात उठी, किंतु हमने उनकी अधीनता में घुटने नहीं टेके, ताकि वह सत्य जो सुसमाचार में निवास करता है तुम्हारे भीतर बना रहे। किंतु जाने माने प्रतिष्ठित लोगों से मुझे कुछ नहीं मिला, वे कैसे भी थे मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक जैसे हैं। उन सम्मानित लोगों से मुझे या मेरे सुसमाचार को कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु इन मुखियाओं ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे वैसे ही एक विशेष काम सौंपा है जैसे पत्रस को परमेश्वर ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाने का काम दिया था। किंतु परमेश्वर ने गैर यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम मुझे दिया। परमेश्वर ने पत्रस को एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी थी। पत्रस गैर यहूदी लोगों के लिए एक प्रेरित है। परमेश्वर ने मुझे भी एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी है, किंतु मैं उन लोगों का प्रेरित हूँ जो यहूदी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने मुझ पर परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ लिया और कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले याकूब, पत्रस और यूहन्ना ने बरनबास और मुझसे साझेदारी के प्रतीक रूप में हाथ मिला लिया और वे सहमत हो गए कि हम विधर्मियों के बीच उपदेश देते रहें और वे यहूदियों के बीच। उन्होंने हमसे बस यही कहा कि हम उनके निर्धनों का ध्यान रखें, और मैं इसी काम को न केवल करना चाहता था बल्कि इसके लिए ललायित भी था। किंतु जब पत्रस अंताकिया आया तो मैंने खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वह अनुचित था, क्योंकि याकूब द्वारा भेजे हुए कुछ लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले वह गैर यहूदियों के साथ खाता पीता था, किंतु उन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहूदियों से अपना हाथ खींच लिया और स्वयं को उनसे अलग कर लिया। उसने उन लोगों के डर से ऐसा किया जो चाहते थे कि गैर यहूदियों का भी खतना होना चाहिए। दूसरे यहूदियों ने भी इस दिखावे में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि इस दिखावे के कारण बरनबास तक भटक गया। मैंने जब यह देखा कि सुसमाचार में निहित सत्य के अनुसार वे सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो सब के सामने पत्रस से कहा, जब तुम यहूदी होकर भी गैर यहूदी का सा जीवन जीते हो, तो फिर गैर यहूदियों को यहूदियों की रीति पर चलने को विवश कैसे कर सकते हो? हम तो जन्म के यहूदी हैं, हमारा पापी गैर यहूदी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के कारण नेक ठहराया जाता है। हमने इसलिए यीशु मसीह का विश्वास धारण किया है, ताकि इस विश्वास के कारण हम नेक ठहराए जाएं, न कि व्यवस्था के विधान के पालन के कारण, क्योंकि उसे पालने से तो कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं होता। किंतु यदि हम जो यीशु मसीह में अपनी स्थिति के कारण धर्मी ठहराया जाना चाहते हैं, हम ही विधर्मियों के समान पापी पाए जाएं, तो इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि मसीह पाप को बढ़ावा देता है? निश्चय ही नहीं। यदि जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ उस रीति का ही फिर से उपदेश देने लगूं, तब तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करने वाला अपराधी बन जाऊंगा, क्योंकि व्यवस्था के विधान के द्वारा व्यवस्था के लिए तो मैं मर चुका, ताकि परमेश्वर के लिए मैं फिर से जी जाऊं। मसीह के साथ मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, यह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर, जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूँ, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जुड़ा पाता तो मसीह बेकार ही अपने प्राण क्यों देता?
गलातियों अध्याय 3।
हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू कर दिया है? तुम्हें तो सब के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था इसका पूरा विवरण दे दिया गया था। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा का वरदान क्या व्यवस्था के विधान को पालने से पाया था, अथवा सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से? क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो कि जिस जीवन को तुमने आत्मा से आरंभ किया उसे अब हाड़ मांस के शरीर के शक्ति से पूरा करोगे? तुमने इतने कष्ट क्या बेकार ही उठाए? आशा है कि वे बेकार नहीं थे। परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और जो तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करता है, वह या इसलिए करता है कि तुम व्यवस्था के विधान को पालते हो, या इसलिए कि तुमने सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास किया है, या वैसे ही है जैसे कि इब्राहिम के विषय में शास्त्र कहता है,
उसने परमेश्वर में विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई।
तो फिर तुम यह जान लो, इब्राहिम के सच्चे वंशज वे ही हैं जो विश्वास करते हैं, शास्त्र ने पहले ही बता दिया था।
परमेश्वर गैर यहूदियों को भी उनके विश्वास के कारण धर्मी ठहराएगा। और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था।
इसलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं, किंतु वे सभी लोग जो व्यवस्था के विधानों के पालन पर निर्भर रहते हैं वे तो किसी अभिशाप के अधीन हैं। शास्त्र में लिखा है,
ऐसा हर व्यक्ति शापित है जो व्यवस्था के विधान की पुस्तक में लिखी हर बात का लगन के साथ पालन नहीं करता।
अब यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक नहीं ठहरता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार
धर्मी व्यक्ति विश्वास के सहारे जिएगा।
किंतु व्यवस्था का विधान तो विश्वास पर नहीं टिका है, बल्कि शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था के विधान को पालेगा वह उन्हीं के सहारे जिएगा। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है,
हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है।
मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें दैनिक जीवन से एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। देखो, जैसे किसी मनुष्य द्वारा कोई करार कर लिया जाने पर न तो उसे रद्द किया जा सकता है और न ही उसमें से कुछ घटाया जा सकता है और न बढ़ाया, वैसे ही इब्राहिम और उसके भावी वंशज के साथ की गई प्रतिज्ञा के संदर्भ में भी है। देखो, शास्त्र यह नहीं कहता, और उसके वंशजों को यदि ऐसा होता तो बहुतों की ओर संकेत होता, किंतु शास्त्र में एक वचन का प्रयोग है। शास्त्र कहता है, और तेरे वंशज को जो मसीह है। मेरा अभिप्राय यह है कि जिस करार को परमेश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया उसे 430 साल बाद आने वाला व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकता और न ही उसके वचन को नकारा ठहरा सकता है, क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था के विधान पर टिका है तो फिर वह वचन पर नहीं टिकेगा, किंतु परमेश्वर ने उत्तराधिकार वचन के द्वारा मुक्त रूप से इब्राहिम को दिया था। फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोजन क्या रहा? आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था, ताकि जिसके लिए वचन दिया गया था उस वंशज के आने तक वह रहे। व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। अब देखो, मध्यस्थ तो दो के बीच होता है, किंतु परमेश्वर तो एक ही है। क्या इसका यह अर्थ है कि व्यवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था का विधान दिया गया होता जो लोगों में जीवन का संचार कर सकता, तो वह व्यवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिकता को सिद्ध करने का साधन बन जाता। किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि यह समूचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर जो वचन दिया गया है वह विश्वासी जनों को भी मिले। इस विश्वास के आने से पहले हमें व्यवस्था के विधान की देखरेख में इस आने वाले विश्वास के प्रकट होने तक बंदी के रूप में रखा गया। इस प्रकार व्यवस्था के विधान हमें मसीह तक ले जाने के लिए एक कठोर अभिभावक था, ताकि अपने विश्वास के आधार पर हम नेक ठहरें। अब जब यह विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम उस कठोर अभिभावक के अधीन नहीं हैं। यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है मसीह में समा गए हो। सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, न कोई यहूदी रहा, न गैर यहूदी, न दास रहा, न स्वतंत्र, न पुरुष रहा, न स्त्री, क्योंकि यीशु मसीह में तुम सब एक हो। और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो, और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहिम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो।
गलातियों अध्याय 4। मैं कहता हूँ कि उत्तराधिकारी जब तक बालक है तो चाहे सब कुछ का स्वामी वही होता है, फिर भी वह दास से अधिक कुछ नहीं रहता। वह अभिभावकों और घर के सेवकों के तब तक अधीन रहता है जब तक उसके पिता द्वारा निश्चित समय नहीं आ जाता। हमारी भी ऐसी ही स्थिति है। हम भी जब बच्चे थे तो सांसारिक नियमों के दास थे, किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो एक स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन जीता था, ताकि वह व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सकें। और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा। वही आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहते हुए पुकारती है। इसलिए अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है, और क्योंकि तू पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। पहले तुम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो तुम लोग देवताओं के दास थे, वे वास्तव में परमेश्वर नहीं थे, किंतु अब तुम परमेश्वर को जानते हो, या यूं कहना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा अब तुम्हें पहचान लिया गया है। फिर तुम उन सार रहित दुर्बल नियमों की ओर क्यों लौट रहे हो? तुम फिर से उनके अधीन क्यों होना चाहते हो? तुम किन्हीं विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को मानने लगे हो? तुम्हारे बारे में मुझे डर है कि तुम्हारे लिए जो काम मैंने किया है वह सारा कहीं बेकार तो नहीं हो गया है। हे भाइयों, कृपया मेरे जैसे बन जाओ। देखो, मैं भी तुम्हारे जैसा बन गया हूँ। या मेरी तुमसे प्रार्थना है, ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे प्रति कोई अपराध किया है। तुम तो जानते ही हो कि अपनी शारीरिक व्याधि के कारण मैंने पहली बार तुम्हें ही सुसमाचार सुनाया था, और तुमने भी मेरी अस्वस्थता के कारण जो तुम्हारी परीक्षा ली गई थी उससे मुझे छोटा नहीं समझा, और न ही मेरा निषेध किया, बल्कि तुमने परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में मेरा स्वागत किया, मानो मैं स्वयं मसीह यीशु ही था। सो तुम्हारी उस प्रसन्नता का क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए स्वयं इस बात का साक्षी हूँ कि यदि तुम समर्थ होते तो तुम अपनी आँखें तक निकाल कर मुझे दे देते। सो क्या सच बोलने से ही मैं तुम्हारा शत्रु हो गया? तुम्हें व्यवस्था के विधान पर चलाना चाहने वाले तुम में बड़ी गहरी रुचि लेते हैं, किंतु उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, ताकि तुम भी उनमें गहरी रुचि ले सको। कोई किसी में सदा गहरी रुचि लेता रहे यह तो एक अच्छी बात है, किंतु यह किसी अच्छे के लिए होना चाहिए, और बस उसी समय नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर प्रसव वेदना को झेल रहा हूँ। जब तक तुम मसीह जैसे ही नहीं हो जाते, मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पास आ पहुँचूँ और तुम्हारे साथ अलग ही तरह से बातें करूँ,
क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए। व्यवस्था के विधान के अधीन रहना चाहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने व्यवस्था के विधान का यह कहना नहीं सुना कि इब्राहिम के दो पुत्र थे, एक का जन्म एक दासी से हुआ था और दूसरे का एक स्वतंत्र स्त्री से। दासी से पैदा हुआ पुत्र प्राकृतिक परिस्थितियों में जन्मा था, किंतु स्वतंत्र स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का परिणाम था। इन बातों का प्रतीकात्मक अर्थ है, ये दो स्त्रियां दो वाचाओं का प्रतीक हैं। एक वाचा सीने पर्वत से प्राप्त हुआ था जिसने उन लोगों को जन्म दिया था जो दासता के लिए थे। यह वाचा हाजिरा से संबंधित है। हाजिरा अरब में स्थित सीने पर्वत का प्रतीक है। वह वर्तमान यरूशलेम की ओर संकेत करती है क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ दासता भुगत रही है, किंतु स्वर्ग में स्थित यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। शास्त्र कहता है,
बांझ आनंद मना, तूने किसी को न जना, हर्ष नाद कर, तुझको प्रसव वेदना न हुई, और हंसी खुशी में खिलखिला, क्योंकि परित्यक्ता की अनगिनत संतानें हैं, उसकी उतनी नहीं है जो पतिवंती है।
इसलिए भाइयों, अब तुम इसहाक की जैसी परमेश्वर के वचन की संतान हो, किंतु जैसे उस समय प्राकृतिक परिस्थितियों के अधीन पैदा हुआ आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हुए को सताता था, वैसी स्थिति आज है। किंतु देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है,
इस दासी और इसके पुत्र को निकाल कर बाहर करो, क्योंकि यह दासी पुत्र तो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा।
इसलिए हे भाइयों, हम उस दासी की संतान नहीं हैं, बल्कि हम तो स्वतंत्र स्त्री की संतानें हैं। कलातियों अध्याय 5। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और फिर से व्यवस्था के विधान के जुए का बोझ मत उठाओ। सुनो, स्वयं मैं पौलुस तुमसे कह रहा हूँ कि यदि खतना कराकर तुम फिर से व्यवस्था के विधान की ओर लौटते हो तो तुम्हारे लिए मसीह का कोई महत्व नहीं रहेगा। अपना खतना कराने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं एक बार फिर से जताए देता हूँ कि उसे समूचे व्यवस्था के विधान पर चलना अनिवार्य है। तुम में से जितने भी लोग व्यवस्था के पालन के कारण धर्मी के रूप में स्वीकृत होना चाहते हैं, वे सभी मसीह से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के क्षेत्र से बाहर हैं। किंतु हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी स्वीकार किए जाने की आशा रखते हैं। आत्मा की सहायता से हम इसकी बाट जो रहे हैं, क्योंकि मसीह यीशु में स्थिति के लिए न तो खतना कराने का कोई महत्व है और न खतना नहीं कराने का, बल्कि उसमें तो प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास का ही महत्व है। तुम तो बहुत अच्छी तरह एक मसीह का जीवन जीते रहे हो, अब तुम्हें ऐसा क्या है जो सत्य पर चलने से रोक रहा है? ऐसी विमति जो तुम्हें सत्य से दूर कर रही है तुम्हारे बुलाने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं आई है।
थोड़ा सा खमीर गुथे हुए समूचे आटे को खमीर से उठा लेता है।
प्रभु के प्रति मेरा पूरा भरोसा है कि तुम किसी भी दूसरे मत को नहीं अपनाओगे, किंतु तुम्हें विचलित करने वाला चाहे कोई भी हो उचित दंड पाएगा। हे भाइयों, यदि मैं आज भी जैसा कि कुछ लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं कि मैं खतने का प्रचार करता हूँ, तो मुझे अब तक यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? और यदि मैं अब भी खतने की आवश्यकता का प्रचार करता हूँ, तब तो मसीह के क्रूस के कारण पैदा हुई मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वे जो तुम्हें डिगाना चाहते हैं खतना कराने के साथ साथ अपने आप को बघिया ही करा डालते, किंतु भाइयों, तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने को चुना है, किंतु उस स्वतंत्रता को अपने आप पूर्ण स्वभाव की पूर्ति का साधन मत बनने दो। इसके विपरीत प्रेम के कारण परस्पर एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि समूचे व्यवस्था के विधान का सार संग्रह इस एक कथन में ही है।
अपने साथियों से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो।
किंतु आपस में काट करते हुए यदि तुम एक दूसरे को खाते रहोगे तो देखो तुम आपस में ही एक दूसरे को समाप्त कर दोगे। किंतु मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की इच्छाओं की पूर्ति मत करो, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होती हैं। इनका आपस में विरोध है, इसलिए तो जो तुम करना चाहते हो वह कर नहीं सकते। किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते हो तो फिर व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं रहते। अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। वे हैं व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट ईर्ष्या, नशा, लंपटता या ऐसी ही और बातें। अब मैं तुम्हें इन बातों के बारे में वैसे ही चेता रहा हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था कि जो लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे वे परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है, ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। उन लोगों ने जो यीशु मसीह के हैं अपने पापपूर्ण मानव स्वभाव को वासनाओं और इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्योंकि जब हमारे इस नए जीवन का स्रोत आत्मा है तो आओ आत्मा के ही अनुसार चलें। हम अभिमानी न बने, एक दूसरे को न चिढ़ाएं और न ही परस्पर ईर्ष्या रखें।
गलातियों अध्याय 6। हे भाइयों, तुम में से यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करते पकड़ा जाए तो तुम आध्यात्मिक जनों को चाहिए कि नम्रता के साथ उसे धर्म के मार्ग पर वापस लाने में सहायता करो, और स्वयं अपने लिए भी सावधानी बरतो कि कहीं तुम स्वयं भी किसी परीक्षा में न पड़ जाओ। परस्पर एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था का पालन करोगे। यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण न होते हुए भी अपने को महत्वपूर्ण समझता है तो वह अपने को धोखा देता है। अपने कर्म का मूल्यांकन हर किसी को स्वयं करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही उसे अपने आप पर किसी दूसरे के साथ तुलना किए बिना गर्व करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अपना दायित्व हर किसी को स्वयं ही उठाना है। जिसे परमेश्वर का वचन सुनाया गया है उसे चाहिए कि जो उत्तम वस्तुएं उसके पास हैं, उनमें अपने उपदेशक को साझी बनाए। अपने आप को मत छलो, परमेश्वर को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जो अपनी काया के लिए बोएगा वह अपनी काया से विनाश की फसल काटेगा, किंतु जो आत्मा के खेत में बीज बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल काटेगा। इसीलिए आओ हम भलाई करते कभी न थकें, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। सो जैसे ही कोई अवसर मिले हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेषकर अपने धर्म भाइयों के साथ। देखो मैंने तुम्हें स्वयं अपने हाथ से कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अच्छा दिखावा करना चाहते हैं, तुम पर खतना कराने का दबाव डालते हैं, किंतु वे ऐसा बस इसलिए करते हैं कि उन्हें मसीह के क्रूस के कारण यातनाएं न सहनी पड़े, क्योंकि वे स्वयं भी जिनका खतना हो चुका है व्यवस्था के विधान का पालन नहीं करते, किंतु फिर भी वे चाहते हैं कि तुम खतना कराओ ताकि वे तुम्हारे द्वारा इस शारीरिक प्रथा को अपनाए जाने पर डिंगे मार सकें। किंतु जिसके द्वारा
मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को छोड़कर मुझे और किसी पर गर्व न हो, क्योंकि न तो खतने का कोई महत्व है और न बिना खतने का। यदि महत्व है तो वह नई सृष्टि का है। इसलिए जो लोग इस धर्म नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांति तथा दया होती रहे। पत्र को समाप्त करते हुए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अब मुझे कोई और दुख मत दो, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने देह में यीशु के घावों को लिए घूम रहा हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्माओं के साथ बना रहे। आमीन।